ओम शांति। हम सभी के जो आइडियल हैं वो मम्मा बाबा है, और उन्होंने जो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया उसको कहा और जो जीवन में धारण किया उनका जीवन हम सभी के सामने है। भले चाहे कोई बाद में भी आए हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानियां लिटरेचर में उपलब्ध हैं और हम सभी ने किसी न किसी रूप में उसका अध्ययन भी किया होगा, सुना भी होगा और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी किया होगा, काफी हद तक किया भी है। लेकिन जितने हद तक बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, शायद अभी तक उतना नहीं करा है, और इसीलिए ही समय प्रति समय ये भट्टियां की जाती हैं कि इन भट्टियों के द्वारा हम अपने अंदर अच्छी तरह झांक सकें, देख सकें और जो बाबा चाहता है उस स्थिति तक हम पहुंच सकें। जहां तक मम्मा बाबा की स्थिति की बात है, हमें ये सौभाग्य मिला है कि बाबा के साथ तो खैर बहुत कई वर्षों तक, 7-8 वर्षों तक रहने का मौका मिला, और एक लाइन में अगर हम कहना चाहें कि उनके समान स्थिति को हम कैसे धारण करें, वो स्थिति क्या है, तो एक लाइन में अगर कहें तो कि बाहर से चाहे जितनी हलचल हो लेकिन अंदर हम उतने ही अचल हो, ये जैसे सबका सार है। बाहर अति हलचल, अंदर अति अचल, ये स्थिति सदा बाबा मम्मा की प्रत्यक्ष देखने को मिली। हम सब ने सुना है, यज्ञ की जीवन कहानी भी पढ़ी है, सुनी है, तो यदि वहां से ही हम देखें तो ब्रह्मा बाबा को भी आपने, कईयों ने जो सुना होगा, भले शायद देखने का सौभाग्य न भी मिला हो, लेकिन बाबा की जीवन कहानी, यज्ञ की जीवन कहानी और यज्ञ इतिहास तो कई बार सुना होगा, तो हम सब ने अनुभव किया है, सुना है कि बाबा को भी जब पहले ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुए, सृष्टि परिवर्तन के भी साक्षात्कार हुए, और बाबा के द्वारा शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, तो बाबा ने भी ये अनुभव किया, क्योंकि बाबा भी लौकिक रीति से अगर देखा जाए तो हम सब की तरह ही साधारण गृहस्थ परिवार के थे। साधारण का मतलब वैसे आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो बहुत अच्छी उच्च स्थिति थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी, लेकिन जो लौकिक रीति से जैसे पत्नी, बच्चे, बच्चियां, उनकी शादी, पोते पोतियां आदि आदि, जैसे सारा परिवार और धंधा भी बहुत अच्छा था, और जब ईश्वरीय ज्ञान भी मिला, उनको अनुभव भी हुआ कि शिव बाबा जैसे उनके तन के द्वारा, बाबा ने मैसेज भी उन्हें दिया था और उन्हें अनुभव हुआ था, जब बाबा का साक्षात्कार हुआ, एक के बाद एक अनेक साक्षात्कार हुए, और जब ये साक्षात्कार हुआ विनाश के बाद कि ऊपर से स्टार आ रहे हैं और नीचे आके राजकुमार राजकुमारी में परिवर्तित हो जाते हैं, वो उन्हें देखने में तल्लीन थे, बहुत खुश थे क्योंकि नई दुनिया स्वर्ग का साक्षात्कार हो रहा था। तो तभी उनके कानों में जो आवाज पड़ी कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और बस ये आवाज सुनते ही जैसे कि उनके अंदर हलचल जैसी मच गई कि मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, ये किसकी आवाज थी, कौन डायरेक्शन दे रहा था। और तब से ही उनका जीवन एकदम बदल गया, परिवर्तित हो गया। बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, हम सब का फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, और हम सब ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो हमारे अंदर भी ये बस अब एकदम बेचैनी होनी चाहिए, हलचल रहनी चाहिए। जैसे आज की मुरली में भी था ना, क्या था आज की मुरली का शीर्षक, सुनी होगी ना आज की मुरली। तो आज की मुरली में खास बाबा ने दो बात जैसे बताई थी कि एक तो अंदर एक बिल्कुल जैसे बेफिकर बादशाह जैसे रहो, लेकिन एक फुरना भी रहे। कौन सा? हाँ, कि मुझे कैसे पतित से पावन बनना है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को जब ये हुआ, मुझे ऐसी दुनिया बनानी है, कौन कह रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगा, तो बस वो ही फुरना अगर हमें लगा रहेगा तो हम ब्रह्मा बाप समान भी स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे, बाबा मम्मा के समान, जैसा कि आज का शीर्षक है। लेकिन अंदर ही अंदर ये फुरना और उसका अनुभव हम सभी को है, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको फुरने का अनुभव है। भले लौकिक का हो, घर में कोई प्रसंग होता है, कोई शादी होती है, कोई इसमें ईश्वरीय परिवार में जब से हम आए हैं, कोई मेला है, कोई बड़ा फंक्शन है, तो हम सब लोग लग जाते हैं, रात दिन उस काम में लग जाते हैं, फुरना रहता है, ये करना है, ये करना है, ये ऐसा प्रोग्राम करना है, इतनों को संदेश देना है। तो उसका हमें आदत है, संस्कार है, बस अब उसको हमें इस रूप में बदलना है कि कैसे हम फुरना भी रहे और उसकी फिक्र भी रहे, लेकिन बेफिकर बादशाह भी। एक तरफ ये रहे कि ये हुआ पड़ा है, कलब पहले बाबा ने करा है, करवाया है, लेकिन अब हमें करना है, हमारे द्वारा ये होना है। और जब ये चिंता अगर हमें लगी रहेगी, सदा चिंता तो नहीं कहेंगे, इस पर हमारा चिंतन जितना चलेगा तो हमें साफ अनुभूति भी होती रहेगी, हाँ कल अब पहले भी ये बाबा ने करवाया था, ये सफलता हुई थी और अभी भी ये होने वाली है। तो एक तो बाबा मामा के समान हम ये बेफिकर बादशाह भी रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये एकदम फुटना भी लगा रहे जीवन के अंदर कि बस मेरे द्वारा बाबा ये करा रहा है। मैं वहां लास्ट डे था, सब स्टॉल भी उखड़ गए थे, अंतिम स्टॉल बाकी था देवी का, और वेदांति बहन वगैरह कुछ बहनें वहां पर वो स्टॉल में निकाल रहे थे, देवी की मूर्ति थी उस समय, अफ्रीका के राम भाई वो आए, सब उखड़ भी चुका था, वहां से वो संदेश लेके गए और अफ्रीका में कई सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। तो भले एक आत्मा है लेकिन अनेकों के सेवा के निमित्त बने। तो इसलिए हमें कभी भी उसके अंदर ये नहीं करना चाहिए अपने को कि अरे इतने थोड़े, नहीं, दो भी बैठे हो, एक भी हो, बाबा ने भी तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा एक को ही सारा उसके स्थापना के निमित्त बनाया। और साथ में ये हो, जैसे भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारी कुटुंब है पूरी पृथ्वी, तो वो वास्तव में हम लक्ष्य रखें। बाबा ने भी हमेशा यही लक्ष्य रखा, पृथ्वी ही हमारी कुटुंब है, इसलिए सृष्टि की समस्त आत्माओं को, कोई भी देश हो, कोई राष्ट्र हो, सबको एमर्ज करके वो भी दान देते थे। और साथ ही साथ एक घटना शायद आपने सुनी होगी, बाबा ना जब गुरुवार को भोग लगता था तो हिस्ट्री हॉल में, तब तो हिस्ट्री हॉल ही था, तीन संदली पड़ी रहती थी, एक पर बाबा बैठते थे, उधर से आते थे गेट से, एक पे मामा बैठती थी और बीच वाली खाली रहती थी संदली। जो भी पार्टी वाले आते थे वो अनुभव सुनाते थे और अनुभव वगैरह सुना करके और संकल्प लेते थे कि हम आगे जाके ये पुरुषार्थ करेंगे आदि आदि। और गुरुवार के दिन संदेशी आती थी, बस उसके सामने भोग होता था, मुरली के पश्चात बस वो थोड़ा बाबा से दृष्टि लेती थी, चली जाती थी वतन में। और बाबा कहते थे, बच्ची गो सुन कम सुन, इस ध्यान में कोई कमाई तो है नहीं। जाती थी, आ जाती थी, संदेश सुना देती थी, यहाँ तक तो सब समझते ही हैं, जानते हैं। फिर बाबा क्या करते थे, हाँ बस भोग का जो थाली थी उसमें जो डब्बी होती थी उसका ढक्कन खोला और उसमें हलवा या जो कुछ भी भोग होता था थोड़ा हथेली पर लिया और हथेली पर लेके कहते थे, बस हाँ बच्ची आओ, बच्ची आओ, बच्ची। तो सब देखते थे बाबा किसे बुला रहा है, तो बस एक चिड़िया होती थी वो फुदकती हुई बस आती थी, पहले कहीं नहीं दिखती थी, बस उस वक्त आई, थोड़ा पास में आई, फिर मेज पर बैठी, फिर बाबा की हथेली पर बैठ जाती थी और यहाँ पर भोग खाती थी है? और भोग खाके और बस उसके बाद वो चली जाती थी। और तो ऐसा मतलब लगता था कि वसुधैव कुटुंबकम की भासना सबको आती थी कि भाई पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, बाबा की हर एक के प्रति वही दृष्टि रहती थी। और बस ये वो जाती थी और फिर हर गुरुवार को ही आती थी वो और आके खाती थी। आपने वो भी सुना होगा बाबा का, एक बार एक मतलब जहां पर वर्तमान में डिस्पेंसरी है उस साइड में, तब तो सब कच्चा था, सीमेंटेड नहीं था, तो एक सांप निकला तो आ रहा था, तो एक भाई ने तो डंडा लेके थोड़ा सांप को उसके ऊपर रखा कि और इसको पकड़ मार दें। तो तभी बाबा किचन का चक्कर लगा के आ रहे थे और वहां पर देखा बच्चे क्या भीड़ लगा रखी है कि बाबा ये सांप है आप जरा दूर रहो। तो बाबा ने कहा नहीं 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 बच्चे तुम क्यों इसके ऊपर ये कर रहे हो, बाबा ये तो किसी को काट लेगा, इसको मार देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं नहीं बच्चे, बाबा ने तुरंत ही, एक बलदेव भाई होते थे जयपुर में तब, और बाद में ज्ञानामृत या वगैरह उसमें भी थोड़ा वो रहे, लिखा करते थे कुछ, तो कहा बलदेव इसको पकड़ो हाँ सांप को और घड़े में डाल के बाहर फेंकाओ। तो उसे थोड़ा हिचक सी हुई क्योंकि सांप का तो कोई एक्सपर्ट ही होते हैं। तो उसने कहा, बस हिचक ही रहा था तभी बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे बाबा करता है। बाबा थोड़ा आगे बढ़ा तो सबने रोक दिया और फिर बलदेव भाई नहीं बड़े पीछे से पकड़ा, मटका मंगाया गया उसमें उसे डाला और उसके बाद कपड़ा वपड़ा बांध के फेंक दिया। देखो देखो बच्चे, इस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सांप हो या कोई हो, बच्चे बच्चा और बच्ची सारी मानव जाति ही नहीं पशु पक्षी जाति भी, ये है वसुधैव कुटुंबकम वास्तव में, जिसको कि ना बाबा एकदम चारों तरफ हर एक आत्मा के प्रति बाबा किए थी। तो हम भी अपने को चेक करें कि वास्तव में मेरी भी, चलो सांप पशु पक्षी इनकी बात तो दूर रही, पहले तो हम आपस में ही सबके प्रति हमारी ऐसी भावना है कि ये हमारा ही परिवार है, हमारा ही कुटुंब है, ये भावना रहनी चाहिए। तो ये थी, जब हम आए ज्ञान में तब तो बाबा काफी समय देते थे हर एक को, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी का पास्ट नहीं देखा, बस पूछते थे परिचय वगैरह देख करके जैसा भी रहा हो। और पास्ट भुलाने के लिए बाबा क्या करते थे, कई बार नाम भी चेंज करते थे, अगर किसी का नाम मानो माया देवी है तो बाबा, अरे बच्चे अब माया का क्या काम, चलो तुम्हारा नाम कुछ भी लक्ष्मी देवी या गीता देवी कुछ भी ज्ञान के हिसाब से बाबा दे देते थे। हमारा भी लौकिक नाम एक्चुअली श्री है वैसे है, तो जब पहली बार बाबा से मिले थे 62 में, तो कानपुर में बाबा कानपुर आए हुए थे, हम लखनऊ में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो लखनऊ से सब लोग कानपुर गए, कानपुर में मिले, बाबा ने पूछा, पहले तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो हमने तो समझा लेट हो गया, तुमने कहा हाँ बाबा बस लेट हो गई और हम सब लेट हो गए, कि नहीं बच्चे बहुत समय से बाबा इंतजार कर रहा था, ऐसे बाबा ने कह के फिर सब नाम वाम पूछा। और जब पूछा तो हमने अपना नाम बताया श्री, तो बाबा ने कहा क्या बच्चे, कि बाबा ये श्री। अरे देखो बच्ची हाँ, बाबा बड़े ह्यूमरस स्वभाव के भी थे, जिसके साथ भी मिलते थे, बड़ों के साथ बड़े, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान, जैसा ऐसा हर एक को ये लगता था कि बाबा मेरा है, अपनेपन का आभास। क्यों? क्योंकि उनके साथ तुरंत ही बाबा ऐसा जैसे अपने संस्कार मिला लेता था। तो बाबा ने कहा आओ दादी, आओ गंगे दादी, बाबा जाते थे तो बाबा के साथ काफी दादियां वगैरह होते थे, तो प्रकाशमणि दादी, बड़ी दीदी आदि सब थे। तो देखो देखो देखो, बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, और बाबा को एक बच्चा मिला जो श्री है। देखो चिटचैट वाली बात, हंसी की, हम तो ज्ञान में नए थे, पूरा समझ नहीं सके, एकदम नए नहीं, मतलब 6-7 महीना हुआ था। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो श्री जैसा हम सबको बनना है, श्री तो वो लगा सकता है नाम के आगे, कौन लगा सकता है, जिसकी आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। अभी तो ना किसी का शरीर पवित्र है, विकारों से पैदा होता है, ना आत्मा पवित्र है, इतना 84 जन्मों का चक्कर काट के आई है, द्वापर युग से है, अनेक अनेक विकर्म किए हैं। तो अभी बाबा तुम्हारा नाम मतलब मोहन करता है, और मोहन, और अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, यानी आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है। तो इस रीति से बाबा जैसे कई बच्चों के नाम चेंज कर देता था, जिससे पुरानी बातें वो बच्चे भूल जाए। अब कई कहेंगे कि हम तो बाबा से मिले नहीं, लेकिन उसमें भाव क्या है कहने का, कि हमारा पिछले जन्म यानी अज्ञान काल का जो जीवन था वो हम बातें विस्मृत कर दें, और जब से मेरा ये नया जन्म हुआ है वो ही बात रखें, ये ही हमारा परिवार है, ये हमारा नया जन्म है, मुझे अब जो है संपूर्ण पवित्र बनना है, पुरानी बातों का कोई जैसे विस्मृति हो जाए। तो एक ये इसी बात की हर एक में हम ये समझें कि बस अब मेरा नया जन्म हुआ है, पुरानी बात जैसे भूल गए। तो पहले तो बाबा जब भी जब जब हम लोग आते थे तो पूछता था कई बात, क्या बच्चे क्या सेवा है, क्या चल रहा है, क्या पुरुषार्थ है आदि आदि। लेकिन धीरे 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 बाबा हमने देखा समेटता जा रहा था, और समेट करके जब बाबा के पास हम लोग पहले जब 62-63 वगैरह में आए, तब तो बाबा बहुत घुमाने भी ले जाता था, बैडमिंटन भी खेलता था या टेनिस वगैरह, और बहुत चिटचैट, क्योंकि यंग लोगों के साथ यंग जैसा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग जैसा। लेकिन जितना समय बीतता जा रहा था 1966-67 वगैरह में, देखते थे बाबा बहुत गंभीर अंतर्मुक्त बाबा के सम्मुख आते थे, एक दो बात पूछी कही और बाबा कहता समझ गया बाबा, और बाबा उसका उत्तर दे देते था। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तो हमें तब हुआ, क्योंकि हम आज इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद धनबाद में आई इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो वर्तमान में IIT है, तो वहां पर आसाम में बाबा ने हमें भेजा पढ़ाई के लिए, उसके लिए सर्विस के लिए। पहला जॉब हमारा ONGC में ही लगा, और देहरादून में ट्रेनिंग वगैरह लेके हम आसाम, हमारी दिल नहीं थी बिल्कुल इतनी दूर जाना, हमने कहा बाबा आसाम में तो पूरे आसाम में एक भी सेंटर नहीं है, कोई गीता पाठशाला क्लास भी नहीं है। तो बाबा कहता था कि इसीलिए तो बाबा तुम्हें भेज रहा है कि तुम जाओ और तुम्हें वहां जाके क्लास स्थापन करनी है और सेंटर खोलना है। तो बाबा का अपने बच्चों में इतना विश्वास था, ना हमें कोई सेवा का अनुभव कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ, और बस बाबा ने पूरा सारा लिटरेचर वगैरह और नीचे बिछाने का पूरा मैटिंग बहुत बढ़िया भाई, इसमें सब लोग बैठना क्लास करना आदि आदि, और बाबा ने भेजा। और बस जो बाबा कहता था, बाबा का हर हफ्ते पत्र आ जाता था, और जो बाबा कहता था वो हम निमित्त करते जाते थे। वो शिव सागर नाम की जगह थी आसाम में तिनसुकिया के पास, और इस तरह गुवाहाटी और वहां पर सब जगह बाबा ने सेवा कराई। और जब बाबा देखता है कि बच्चे बुद्धिवान नहीं हैं इतने, और समझने वाले ज्यादा बुद्धिवान आ रहे हैं, तो बाबा क्या कहता है, बाबा खुद उनमें प्रवेश करके ज्ञान सुना देता है। ऐसा हमें कई बार अनुभव हुआ वहां कि भाई हम भी बहुत अनुभवी नहीं थे, और सुनने वाले सब आते थे जो, और आते ही जैसे बाबा बोल रहा है वो ध्यान में चले जाते थे। बहुत माताएं, ज्यादातर करके 70-80 मारवाड़ी माताएं थी, और वो बस ध्यान में एकदम चले जाते थे। और जब ध्यान तो भक्ति मार्ग में बड़ी चीज समझी जाती है, तो सारे शहर में एकदम ये हो गया कि भाई वहां पर भगवान के दर्शन होते हैं। और थोड़े ही समय में, क्योंकि भगवान करण करावनहार है, तो वो बाबा कराता था अपनी लीला, और चारों तरफ इतना भीड़ कि एक 2-3 महीने के अंदर ही 150-200 की क्लास। उस समय क्लास क्या ये समझते, क्योंकि हरेक दर्शन और साक्षात्कार की इच्छा लेकर आता था। अब हरेक को तो नहीं होता जिसका जो पार्ट होता है, लेकिन बहुतों को होता था, तो इसीलिए सब इस प्रकार से बाबा ने वहां अपना उस रीति से सेवा कराई आसाम में। और बाबा को हम पत्र लिखते रहते थे, सब आते थे, और वहां पर बाबा उसका जवाब देते थे। तो हम आसाम में से वहां पर ये थे, सेवा चल रही थी। तो बाबा, हमने बाबा को लिखा, बाबा देहरादून से हम गए थे कि वहां पर बहन जी ने कहा है कि म्यूजियम नया बनाना है, आप वहां पर आ जाओ थोड़ा दिन छुट्टी लेके, तुम वहां जाएं। तो बाबा का तुरंत आया कि हाँ भले जाओ वहां, लेकिन पहले यहाँ आओ और तुरंत आओ फ्लाइट से। और बस ये जनवरी 1969 की बात है। और बस बाबा ने कहा, हमने जल्दी जल्दी ऑफिस में, पहला ही जॉब था और एक साल ही हुआ था, तो अप्लाई करा, और वहां से फ्लाइट से हम मधुबन 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए, अपने लौकिक पिताजी को भी लिख दिया था, वो भी आ गए, हम दोनों 17 जनवरी 1969। तो दो दिन हमें 17 और 18 जनवरी बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। वैसे तो बहुत बार मिले थे बाबा से, और उसको हम खास शेयर करना चाहते हैं। तो पहले तो जब भी मिलते थे बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या सर्विस चल रही है, ऐसा करो ऐसा करो, और हम सोचते थे कि चलो अब बाबा के पास जाके सेवा का ये समाचार सुनाते हैं। तो 17 और 18 जनवरी को जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे तो बस बाबा दृष्टि देते ही और अंदर की बात पूरी एकदम जान जाते थे, और बच्चे ये कहने आए हो, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करो और ऐसा ऐसा हो जाएगा। कोई भी बात हो, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, क्लास की बात हो, कुछ भी हो, तो ये है जो भारतीय संस्कृति का एक और सिद्धांत है, मन जीते जगत जीत का। बाबा ने अपने मन को इतना जीत लिया था, व्यर्थ संकल्पों का कोई वहां स्थान ही नहीं था, और इस रीति से बाबा दूसरे के मन को तुरंत ही पूरा का पूरा पढ़ देता था। ये हमने वहां पर 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार बाबा से मिले होंगे अलग अलग, तो 5-6 बार हर बार ये अनुभव हुआ, हमें एक सेकंड भी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण, मन जीते जगत जी। जिसने अपना मन जीत लिया, कोई भी उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं, उसने जैसे जगत जीत लिया। विश्व महाराजन अष्ट रत्नों की ये क्वालिफिकेशन एक और है। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे अब ये देखना है कि मुझे व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय। कुछ गुलजार दादी जब यहाँ पर थे, कई साल पहले की बात है, हम लोगों की वरिष्ठ भाइयों की भट्टी थी, तो दादी ने एक संदेश सुनाया कि बाबा ने कहा है कि बाबा बच्चों को ये तो सर्टिफिकेट देता है कि बच्चों में अब विकारी संकल्प नहीं है, बहुत कंट्रोल बच्चों ने कर लिया है, लेकिन अभी भी बच्चों को व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो अभी आवश्यकता यह है कि व्यर्थ संकल्पों को वो ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि ये विकारी संकल्प है। तो इसीलिए उसको लाइटली न लें, व्यर्थ संकल्प भी जैसे विकारी संकल्प, अभी कोई विकारी संकल्प अगर आएगा तो अपने पर भी खीज आएगी, जैसे कि अरे इतने साल हो गए और अभी भी विकारी संकल्प। तो विकारी संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी है, तो इसको यही समझो जैसे कि ये विकारी संकल्प है, व्यर्थ नहीं है, विकारी है। तो इसीलिए बाबा ने एक बच्चों को वो जैसे सावधानी दी, और ये प्रत्यक्ष देखने को मिला कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे अंतिम दिन 18 जनवरी को भी, अब बाबा को जैसे पहले से ही आभास हो गया था कि बस आज कल ये मेरा अंतिम समय है। इच्छा मृत्यु जो कर्मातीत अवस्था होगी, उसे बाबा ने कई बार बताया भी, कर्मातीत अवस्था हुई और शरीर छोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ। उस कर्मातीत स्थिति का अनुभव बच्चों को कुछ दिन होना चाहिए, उसके बाद शरीर छोड़े तो कर्मातीत अवस्था क्या है वो उसकी अनुभूति होगी। तो इस कारण से बाबा को जैसे पहले से आभास हो गया था, हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा 18 तारीख को क्लास में आए, और क्लास में आके बाबा ने मुरली वगैरह चलाई। उस दिन 18 की सुबह कोई भी मुरली नहीं चलाई, 18 को आके बस बाबा ने सिर्फ योग कराया, और बस अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए 18 की सुबह। और उसके बाद ईशु दादी को बोला कि सारे जो भी पत्र लिखे जवाब लिखवाने हो वो लिखवा लो, क्योंकि उस टाइम तो ये इंटरनेट और ईमेल और ये सब तो था नहीं, तो इसीलिए यीशु दादी ने सब पत्र लिखवा लिए, पत्रों के जवाब। तो एक काम ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। दूसरा काम, बाबा ने कहा कि बच्चे वो जो वहां पर नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है, तब वहां प्रदर्शनी रखी हुई थी, वो बिल्डिंग हमारी अपनी नहीं थी, तो वहां पर कईयों के संकल्प चल रहे थे अगर इस बिल्डिंग को ले लें तो यह म्यूजियम बन जाए तो सब लोग आएंगे, जो सनसेट से आती है भीड़ सब म्यूजियम देखेंगे। तो बाबा का काफी समय से विचार था, लेकिन तब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, तो बहुत दिन से पेंटिंग पड़ा था। लेकिन उस दिन बाबा ने उसको भी क्लियर करा कि इस बिल्डिंग को लेकर के वहां सेवा का कोई साधन बनाया जाए। एक ये है। फिर बाबा ने, और उस दिन रोज क्लास होती है रात को 8:45 बजे मधुबन में, उस दिन बाबा ने शाम को 6:30-7 बजे ही बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब बच्चे भोजन करके, स्पेसिफिक भोजन करके क्लास में आ जाए 7 बजे तक। तो ऐसे 7:30 तक सब बच्चे भोजन करके आए और फिर बाबा भी क्लास में आए। तो उस दिन की ब्यूटी ये थी कि बाबा ने जो भी क्लास कराई, बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। नहीं तो हमेशा बाबा को कई बार खांसी आती थी तो बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। कफ थूकने की जरूरत नहीं पड़ी और कुछ भी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब कर्मातीत अवस्था होती है तो कर्म भोग के ऊपर, शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये वहां पर देखने को मिला। पूरे समय बाबा ने हमेशा बस जब मुरली चलाई विदाउट एनी फ्लो, बिल्कुल एक बार भी रुके नहीं, खांसी नहीं आई। नहीं तो कई बार बाबा को जब खांसी आती थी पहले, तो जब खांसी, तो उसमें बाबा कैसे स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता था, तो खांसी रूपी परिस्थिति आई और कई बार बाबा की आंख में पानी गीला भी हो जाता था, और लेकिन बाबा थोड़ी देर में ही जैसे स्वस्थिति में स्थित होके बाबा कहता था, देखो बच्चे अब तो ये पुराना शरीर है, 5 तत्व भी पुराने हो गए हैं और ये शरीर भी पुराना है, खांसी आती है, कर्म भोग है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, यानी वहां पास में ही श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट के पिक्चर होते थे, तो बाबा बस देखो कल बाबा जाके ऐसा बनेगा और बच्चों को खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसा बाबा करके भी कई बार बताता था, ये खग्गियां माने खूब खुशी में रहना चाहिए, कोई परिस्थिति आए तो स्वस्थिति इतनी मजबूत करो कि परिस्थिति डाउन हो जाए। तो ये हम सबके लिए बाबा का संदेश है कि परिस्थिति आए, कोई भी पेपर आए, लेकिन हम उससे घबराए नहीं, ये क्यों आया, क्या हुआ, कैसे होगा, नहीं, स्वस्थिति को बस हम मजबूत करें और स्वस्थिति मजबूत होगी तो परिस्थिति अपने आप डाउन हो जाएगी। तो इस तरह करके बाबा, और उस दिन तो बाबा ने बस क्लास कराई और क्लास करा के यहाँ पर बाबा, अच्छा बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाबा क्लास से बाहर चले गए। हमें मुरली, हम सम्मुख सुन रहे थे, तो मुरली सुनते सुनते ही हमें एकदम संकल्प आया। हाँ, जैसे अभी भी आता है ना, सब लोग आते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी आते हैं, तो बच्चों को ये आता है, अरे मुझे स्टेज पर जाने का चांस मिल जाए, या बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, या दृष्टि मिल जाए, होता है ना। तो ऐसे ही उस समय हमारे मुरली सुनते सुनते हमारे मन में संकल्प आया, तब तो साकार बाबा मुरली चला रहे थे, 18 जनवरी की रात्रि क्लास की बात है, और मुरली चलाते कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए, कुछ बोले बाबा, गाइडेंस दे, बस संकल्प जैसे कि हुआ, और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, कर्मातीत स्थिति थी, तो जैसे कहते हैं भक्त का संकल्प हुआ और भगवान को पहुंचा, अब भगवान बस तथास्तु कह देते हैं और भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है। तो हमारे मन में संकल्प उठा, बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही महावाक्य कुछ उच्चार दिए, नाम लेके कि देखो ये बच्चा मोहन है, बस बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और हम तक संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा बोल के बाबा ने पूरा सबको याद प्यार दी और दरवाजे से बाहर निकल के गए। और बाहर निकल के गए, दादी जी के भी साथ में थी, दादी जी के हाथ में हाथ, और बस बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो 18 जनवरी की रात्रि की बात। और उसके बाद ना वहां पर वंडर तो तब हुआ, सारी रात भर हम लोग टेलीग्राम लिखा, टेलीफोन करे दादी जी ने, बहुत पूरी रात भर ये चलता रहा, चारों तरफ से उत्तर आ रहे थे, शरीर रखो, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने मन जीते, जगत जीत तो करा ही, लेकिन मन अकेला क्या करेगा, ये जब तक ये शरीर जो है पांच तत्वों का बना, इसके द्वारा मन या आत्मा पार्ट प्ले नहीं करेगी, तब तक तो कुछ नहीं कर सकती आत्मा भी अगर शरीर नहीं हो। लेकिन उस वक्त देखा 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा और 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 तारीख को संस्कार बाबा का हुआ। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई भी उसके अंदर कालापन नहीं आया, दुर्गंध नहीं आई, कोई उस वक्त इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कुछ भी नहीं, कोई केमिकल लेप नहीं लगाया गया, लोशन बिल्कुल, लेकिन शरीर वैसा का वैसा ही बाबा का था। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण, वो मन जीते जगत जीत, और ये प्रकृति जीते जगत जीत। इतना 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन प्रकृति जीत, ये पांच तत्व। तो हमें भी मन जीते जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है, पांच तत्वों को। इसीलिए ये पांच तत्व जो है का बना शरीर है, रोज हम पांच तत्वों को भी कुछ मिनट योगदान जरूर करें, बस उनको सम्मुख ला करके, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनको जितना जितना योगदान करते रहेंगे उतना उतना हम जो है प्रकृति जीत भी बनते जाएंगे। ऐसे में मुझे जस्ट एक बात दादी की याद आ रही है, दादी जानकी की, कि 31 दिसंबर 1999 की बात है, से लास्ट जो है डिकेट, तो दादी लोटस में थी उधर अहमदाबाद में, तो दादी की तबीयत काफी खराब हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि भाई अब जिसको बुलाना हो जो करना हो, लेकिन तबीयत बहुत खराब है। तो उसके बाद वहां पर, यहाँ पर तो बाबा 31 दिसंबर को तो बाबा आते ही हैं, तो 31 दिसंबर को बाबा आए हुए थे, तो निर्वैर भाई और दादी प्रकाशमणि जी दोनों बाबा के पास मिल रहे थे बाद में। तो दोनों ने बताया कि भाई बाबा, दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब है और वो वहां है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो बाबा ने देखा, बाबा ने कहा नहीं बच्ची कुछ नहीं, वो प्रकृति जीत आत्मा है और उसे कुछ नहीं होगा। फिर बाबा तो यहाँ चले गए और उधर दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो गई। और आप सभी जानते हो 1999 से लेकर 2020 तक दादी ने कितनी सेवा करी, दादी जानकी ने। तो ये प्रकृति जीत का, हाँ, तो दादी से कई बार हम पूछते थे बाबा ने आपको प्रकृति जीत बनाया है तो आपने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया दादी, तो कहते नहीं कोई खास नहीं, लेकिन मैं शुरू से ही बस खुले में जब भी होती हूँ और ज्यादातर करके मैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सब को जैसे योगदान करती हूँ कि आप तो हमारे बहुत पुराने साथी हो और आपको और हमें मिलकर के इस नई सृष्टि का निर्माण करना है, और इस रीति से प्रकृति को मैं योगदान करती हूँ। हम सबको भी तो प्रकृति जीत बनना है ना, तो इसीलिए मन के साथ साथ प्रकृति जीत भी हम सब बनते चले, और जितना जितना प्रकृति जीत बनते चलेंगे, मन जीत बनते चलेंगे, उतना उतना हम सब बाबा मम्मा के साथ। देखो मम्मा पूरा प्रकृति जीत और वो नहीं, तो बाबा ने दूसरे जन्म में उन्हें पूरा चांस दे दिया, और हम सबको ये जो मिला है तो इसी के अंदर ही हमें मन जीते, जगत जीत और प्रकृति जीत, और मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करके हमें सबको संपूर्ण बन के जाना है। ठीक है, तो इसी के लक्ष्य के साथ ही हम सब यही जीवन में लक्ष्य रखे कि मुझे कर्मातीत बन के प्रकृति को भी जीतना है। ओम शांति, ओम शांति।
Oh.